الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معارف القرآن کی، جن نمبر 3 میں سے، اور آیات آپ کے سامنے 113، 14، بلکہ 114، 15، 16 اور 17 سورہ انعام کی، وہ ابھی تلاوت کی گئیں. ان کے خلاصے تفسیر جو ہے وہ ہم پڑھ کے مکمل کر چکے تھے پچھلے ہفتے کی پیر کی کلاس میں، اور آج معارف و مسائل ہم اس کلاس میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اگرچہ کہ جمعہ کے درس میں بھی معارف و مسائل کا کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کے اوپر بات کر لی تھی، لیکن کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حق کو صحیح ہونے پر کھلے کھلے معجزات اور دلائل دیکھنے اور جاننے کے باوجود اب دھرمی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. انہیں دلائل دیکھ لیے، معجزات بھی نبی علیہ السلام کے دیکھ لیے، شق القمر جیسے معجزات بھی اور بھی دیگر معجزات، لیکن پھر بھی ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں قسم کے خاص معجزات ہمیں دکھلائے جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آگے سے مزید ڈیمانڈس، مزید ڈیمانڈس. قرآن کریم نے ان کی کچھ بحثی کا یہ جواب دیا کہ جو معجزات یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ان کا ظاہر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خالق کائنات ہیں. ہم کوئی ایسی کوئی زمینی سرکار کوئی تھوڑی ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہم تو خالق کائنات ہیں، اللہ رب العزت، تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ جو کچھ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ہٹ دھرم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ان کے اندر کی خرابی ہے. تو وہ تو اوپر کے حالات کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہوتی ہے. اچھے حالات ہو جائیں تو ناشکری کریں گے، اور اگر برے حالات ہو جائیں تو بے صبری کریں گے، کیونکہ حالات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے اندر کا ہے. اور قانون قدرت کے ماتحت پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب پر عذاب آ جائے گا، کہ جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر معاملہ ختم کر دیتے ہیں نا، پھر وہ عذاب کا فائنل سلسلہ جو ہوتا ہے جس میں کہ ساری نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں، تو وہ عذاب پھر ان کے اوپر آ جائے گا جیسے پچھلی بہت ساری امتوں کے اوپر عذاب آئے، اسی طرح ان پر بھی آ جائے گا. اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر کرنے سے شفقت کی بنا پر انکار کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ میرا اصول ہے، تو نبی علیہ السلام نے شفقت کی بنا پر کہ بھئی نہیں چاہتے تھے کہ نو کے اوپر اجتماعی عذاب آ جائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پھر منع کر دیا. اور جو معجزات و دلائل اب تک ان کے سامنے آ چکے ہیں انہی میں غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی، یعنی بدستور اپنی دعوت میں لگے رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جب بتا دیا کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، آگے اللہ کی بات جو ہے وہ فارورڈ کر دی ان کو. वे अल्लाह ताला ने मना कर दिया है, तो अब मैं कुछ थोड़ी हूँ कि जो कि मौजजा दिखा तो फिर हूँ अपनी मर्जी से, ये तो अल्लाह ने करना था ना, तो अल्लाह ने मना कर दिया, तो अब नहीं सो नहीं। तो लेकिन काम जो है वो जारी रखा। मज़कूरा आयात में उन दलाइल का बयान है जिनसे बदीही तौर पर कुरान करीम का हक और कलाम इलाही होना साबित है। तो इन आयात में ना फिर कुरान करीम के हक होने के जो दलाइल उलमाए कराम ने अखज किए, क्योंकि बज़ाहिर तो हम जैसे लोग तो इन आयात को पढ़ेंगे तो हमें तो इनमें से दलाइल नजर ही नहीं आएंगे कि भाई क्या कुरान के सच होने के दलाइल इन आयात के अंदर कौन से वाले मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं। तो ये तो फिर जिसने इल्म हासिल किया होता है उसी को बात समझ में आती है ना। इनकी हकीकत यही है कि बगैर इल्म के बात ही समझ में नहीं आती, इल्म हासिल करते हैं तो फिर नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता था, अच्छा ऐसा भी है इसके अंदर, अच्छा ऐसा भी है इसके अंदर, हालांकि चीज तो पहले से मौजूद थी ना। ठीक है, तो नजर नहीं आती, तो उसके लिए फिर जो है ना वो उसूली इल्म हासिल करना पड़ता है ना। उसूली इल्म का क्या मतलब कि भाई वो बात जो है वो जिस लैंग्वेज में हो रही है उस लैंग्वेज का इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं उसूली इल्म। अगर अंग्रेजी में बात हो रही है और आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप उस चीज को देखेंगे, उस रिटन मटेरियल को देखेंगे और आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक एक लफ्ज का अलग अलग इल्म हासिल करने की बजाय लैंग्वेज का इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, तो जब लैंग्वेज आ जाएगी तो फिर आप उसको पढ़ेंगे और आपको कुछ बेसिक लेवल की तो नॉलेज हासिल हो जाएगी ना, उसके अंदर क्या चीजें कही जा रही हैं। तो लैंग्वेज का इल्म ये उसूली इल्म है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर और भी लेवल्स होते हैं इनके कि भाई जिस बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है, जिस पस मंजर के साथ बात हो रही है, तो उस पस मंजर का इल्म हासिल करेंगे तो और ज्यादा गहराई हासिल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और भी होता है कि भाई आप जो चीजों को देख रहे हैं उसके पस मंजर को देख रहे हैं, उसके अंदर जो मजामीन बयान किए जा रहे हैं, तो उन मजामीन को भी देखने के लिए ना एक बसीरत टाइप की भी एक चीज होती है ना, बसीरत। ठीक है, जिसको कि आप टेंजिबली डिस्क्राइब नहीं कर सकते लेकिन इनटेंजिबल किस्म की एक एक फैकल्टी ऑफ नॉलेज कहते हैं ना इसको, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक गहराई। ठीक है, जो कि बंदे के अंदर ओवरऑल या तो एक्सपीरियंस के जरिए से आती है। ठीक है, या ये कि क्लैरिटी ऑफ विजन जब उसको मिलता है तो फिर उसको चीजें ज्यादा समझ में आनी शुरू हो जाती है ना। बेशक लैंग्वेज भी आती है आपको और आपको जो है पस मंजर के वाकयात का भी पता है, लेकिन अगर आपका अपना दिमाग क्लाउडी हुआ हुआ है, ठीक है, अपना दिमाग आपका क्लाउडी हुआ हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर आप नींद में हैं, ठीक है ना, अगर आप नींद की हालत में हैं तो फिर भी आपको बात समझ में नहीं आएगी, है ना भाई। हालांकि आपको लैंग्वेज भी आती है, हालांकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी इल्म है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप नींद की हालत में हैं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो तीसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या कि आपकी अपनी अवेयरनेस, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस, ये भी ठीक हो ना। ठीक है, तब आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो क्या बात उसूल की क्या बात हमें हमें मिली कि पहली बात तो भाई लैंग्वेज का आना, दूसरी बात ये कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का अवेलेबल होना, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स का मालूम होना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप उसको कह सकते हैं, और तीसरा ये कि आपकी अपनी कंडीशन भी तो इस काबिल हो ना कि आप समझने के काबिल हो। ठीक है, नींद की तो एक मिसाल दी है लेकिन और भी हालतें हो सकती हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ इंटॉक्सिकेंट किस्म की चीज आपने पी ली है, कुछ शराब टाइप की कोई चीज पी ली है, तो जिसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर जो है वो गशी तारी हुई है, या आपका आपको बहुत टेम्परेचर आपका हाई हुआ हुआ है। ठीक है, आपको बुखार की कैफियत हुई हुई है, तो बुखार की कैफियत जो है ये एक अलग कैफियत है, ये नींद भी नहीं है, ये नशे की कैफियत भी नहीं है, लेकिन बुखार की अपनी कैफियत होती है, सर जो है ना वो घूम रहा होता है, तो उस वक्त भी आपको बातें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बात समझने के लिए इन सारे फैक्टर्स का जो है ना वो दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक है, कुरान मजीद वाली बात समझने के लिए भी एक और कैफियत का दुरुस्त होना जरूरी है कि भाई इंसान जो है ना वो गुनाहों की जिंदगी ना गुजार रहा हो, ठीक है, गुनाहों की जिंदगी ना गुजार रहा हो, बल्कि जितना उसके अंदर तकवा होगा उतना ज्यादा कुरान मजीद की बात उसको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तीसरी जो है ना वो कंडीशन, ये इंसान की अपनी कैफियत वाली कंडीशन है कि वो कितनी अच्छी कैफियत है, तो फिर आपको बात ज्यादा समझ में आ रही होती है, ठीक है। तो इन लोगों की कैफियत क्या थी, इन लोगों की कैफियत जो है ना वो हठधर्मी वाली कैफियत थी, तो उस वजह से उनको बात नहीं समझ में आती थी। नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी बात अच्छी तरीके से समझाते थे, इनको नहीं समझ में आती थी। आगे फरमाते हैं कि पहली आयत में जो इरशाद फरमाया, अच्छा जुमे के दर्स में ये बात हो भी चुकी है लेकिन दोबारा रिपीट करने की भी जरूरत है, वो ये कि हम जब किसी को अपने खानदान में या अपने दोस्त अहबाब में दावत देते हैं दीन की तरफ, गुनाहों को छोड़ने की और अल्लाह ताला की अजमत उसके सामने बयान करते हैं, तो अगर वो हमारी बात नहीं मानता, वो दीन की जिंदगी इख्तियार नहीं करता, बल्कि आगे से जो है ना वो उल्टी सीधी डिमांड्स करना शुरू कर देता है कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम जो है ना वो ये कहना छोड़ दो कि पर्दा फर्ज है, तुम ये कहना छोड़ दो कि गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, तो फिर मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात, फिर मैं दीन में आ जाऊंगा, तो इस किस्म की बातों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, ठीक है। कि भाई अगर वो दीन को अगर हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, सॉफ्ट सेल कर देंगे, तो वो बंदा जो है वो दीन में आ जाएगा। सॉफ्ट सेलिंग से मुराद ये है कि दीन के अहकाम को चेंज कर देंगे अपनी तरफ से ना, कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दाढ़ी तो उगा लेना कम से कम, मैं कह देता हूँ कि पर्दा फर्ज नहीं है, ठीक है। तो अब आपकी बेगम यानी दीनी उसूल को मैं बदल देता हूं ताकि आप खुश हो जाएं और आप थोड़ा बहुत जो है ना वो दीन में आ जाएं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम दीन को चेंज नहीं कर सकते उनकी डिमांड्स की बुनियाद पर, उनकी डिमांड्स की वजह से, ठीक है। हाँ ये और बात है कि आप सारा का सारा एक साथ उसके ऊपर डंप ना कर दें, सारे के सारे फराइज और सारे के सारे वाजिबात एक साथ उसके सामने और ना उठा करके उसको बयान कर दें, ठीक है, ये तो ना बयान करना है ना कि भाई इस वक्त सारे बयान नहीं किए, लेकिन एक होता है कि चेंज कर देना, ठीक है, ये कहना शुरू कर देना कि नहीं अगर आप यानी क्योंकि आप कह रहे हैं कि पर्दा निकाल दो दीन में से फिर मैं आ जाऊंगा दीन के अंदर, तो हम निकाल देते हैं पर्दा दीन में से, ये नहीं कर सकते, इन दोनों में फर्क है ना। एक होता है पूरा का पूरा आपने सारे फराइज और वाजिबात उठा करके उसके सर पे एकदम से, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जो है वो उसके डिमांड के ऊपर आपने अहकाम ही चेंज कर दिए, इन दोनों में फर्क है ना। वो काम आप ना करें और ये काम भी ना करें, ठीक है, ना चेंज करें और ना जो है पूरा का पूरा उसके ऊपर उठा के सर पे पटक दें सारा का सारा दीन एक साथ ही, ठीक है। पहली आयत में जो इरशाद फरमाया इसका हासिल ये है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकदमा है रिसालत और नबूवत में इख्तलाफ है, मैं इसका मुद्दई हूँ, तुम इसको मुन करो, गोया कि मुकदमा सा है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं रसूल हूँ और मैं अल्लाह के अहकाम तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कहते हो कि नहीं मैं रसूल भी नहीं हूँ और मैं अल्लाह के अहकाम तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, तो भाई ये मुकदमा ना अहकुमुल हाकिमीन के इजलास से मेरे हक में इस तरह तय और फैसल हो चुका है कि मेरे इस दावे पर काफी सबूत और दलील खुद कुरान का एजाज है। कुरान मजीद जो मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ, जो तिलावत कर रहा हूँ, तो इसने तुम्हें आजिज कर दिया है, तुम इसका कोई जवाब या इसकी रद्द जो है वो तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ने अपना कलाम मुझे दे करके ऑलरेडी ये मुकदमे का फैसला कर दिया है, ठीक है। तो अब तुम आगे से मजीद जो है वो मुझसे जो दलाइल मांगे चले जा रहे हो ना, तो उसकी जरूरत नहीं। जिसने तमाम अकवाम आलम को चैलेंज किया कि अगर उसके कलाम इलाही होने में किसी को शुबा है तो इस कलाम की एक छोटी सी सूरत या आयत का मुकाबला करके दिखाओ, जिसके जवाब में तमाम अरब आजिज रहा, और वो लोग जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को पस करने के लिए अपनी जान माल औलाद आबरू सब कुछ कुर्बान कर रहे थे, इनमें से एक भी ऐसा ना निकला कि कुरान के मुकाबले के लिए एक दो आयत बनाकर पेश कर देता, एक खुला हुआ मुआवजा क्या कबूल हक के लिए काफी ना था कि एक उम्मी जिसको सब जानते थे कि ये उम्मी है, जिसने कहीं से तालीम नहीं पाई, उसके पेश किए हुए कलाम के मुकाबले से पूरा अरब बल्कि पूरा जहान आजिज हो जाए। ये दर हकीकत अहकमुल हाकिमीन की अदालत से इस मुकदमे का वाज़ह फैसला है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बरहक और कुरान अल्लाह जल्ल शानहु का कलाम है। ये बात जो मेरे को भी बताई थी कि उस जमाने में तो अरबी जुबान का एजाज जो था ना वो दलील था, ठीक है, और चूंकि उन लोगों को अरबी आती थी और बेहतरीन अरबी आती थी और बड़ा फख्र करते थे अरबी आने के ऊपर, और बड़े असरार और रमूज से जो है वो अरबी जुबान के वाकिफ थे, लेकिन वो कुरान की अरबी का मुकाबला नहीं कर सके। आज के जमाने में शायद किसी को अरबी इतनी आती हो, वरना तो किसी को नहीं आती, ठीक है। तो फिर आज के जमाने में कुरान का एजाज क्या खत्म हो गया? अब कुरान जो है वो अब उसकी दलीलें खत्म हो गई, क्योंकि अरबी जुबान की रेलेवेंस जो है वो अब इतनी नहीं रही दुनिया के अंदर, नहीं, बल्कि इस दौर में अल्लाह ताला ने जो इस वक्त की बड़ी चीज समझी जाती है जिसको साइंस कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस दौर के हिसाब से इंसानों के दिलों के अंदर ये बात डाली कि भाई कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो तुम साइंटिफिक मिरेकल्स तलाश करो। तो जब लोगों ने कुरान में साइंटिफिक मिरेकल्स तलाश किए तो एक से बढ़कर एक जो है वो साइंटिफिक मिरेकल्स मिल गए कुरान मजीद के अंदर ही, ठीक है, जिसका के ये साइंसदान ही इनकार नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन्होंने भी जो है ना वो चुप की रास का रास्ता इख्तियार कर लिया, जिस तरह उन लोगों ने चुप का रास्ता ना, क्योंकि वो अरबी का जवाब नहीं दे सके कुरान मजीद की, ठीक है, कुरान मजीद का एजाज का जवाब नहीं दे सके, तो माना तो नहीं उन्होंने, वो मुसलमान तो नहीं हो गए, मुसलमान तो वो बाद में जाके दूसरी वजूहत से हुए, ठीक है, लेकिन इसका मुकाबला करने से ना उन्होंने खामोशी से खामोश विड्रॉल इख्तियार कर लिया, उन लोगों ने ना खामोश विड्रॉल के, नहीं चलो इधर इधर से तो हम हार गए ना, तो हम अब इस बात ही नहीं करते इसके बारे में। यही मामला आज के साइंसदानों ने भी किया कि चूंकि उन्होंने अपनी शिकस्त देख ली तो तस्लीम तो नहीं करी उन्होंने शिकस्त, साइंसदानों ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम तो नहीं करी, इल्ला ये कि चंद एक ने जो कि उन्होंने किताबें लिखी मुसलमान भी हो गए, वो चंद एक तो जमाने में भी थे जिन्होंने नबी अली जिन्होंने कुरान मजीद के एजाज को कबूल किया और बाकायदा इकरार करके वो मुसलमान भी हो गए, चंद एक तो उस जमाने में भी थे और चंद एक आज के जमाने में भी है, वो साइंसदान जो कि मुसलमान हो गए, बाकी सारे जो है ना उन्होंने रिट्रीट का रास्ता इख्तियार कर लिया है कि अब वो इसके ऊपर बात ही नहीं करते, ठीक है, कि नहीं ये जो है ना साइंटिफिक बातें ये गलत है, ये तो ऐसा है और ये तो वैसा है, तो इसकी इसकी फलानी एक्सप्लेनेशन उसकी फलानी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते ना, तो इसी वजह से उन्होंने रिट्रीट कर लिया है, और रिट्रीट करके जो है ना फिर वो इधर उधर की बातें यानी करते ही नहीं है, इसको खामोश खामोशी इख्तियार कर ली इसके ऊपर, हत्ता कि जिस चीज के वो बहुत बड़े दावेदार होते थे, डिनायल ऑफ ए क्रिएटर, डिनायल ऑफ गॉड, उसी को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। ये डिनायल ऑफ गॉड जो है ना ये बहुत बड़ा मॉडर्न साइंसदानों का ये यानी ऐसा था कि कोई साइंसदान उस वक्त तक साइंसदान कहलाने के काबिल ही नहीं समझा जाता था कि जब तक वो गॉड को डिनाई ना करे, ठीक है, जब तक वो गॉड को डिनाई ना करे, क्यों? इसलिए कि गॉड जो है वो उनकी एम्पेरिकल एविडेंस में फिट ही नहीं आता था, ठीक है ना, इम्पेरिकल एविडेंस में उनको फिट ही नहीं आता था गॉड, तो कोई अगर गॉड का इकरार करे तो कहते थे ये तो साइंसदान ही नहीं है, ये तो कोई तवहुमात के ऊपर बिलीव करने वाला बंदा है, और साइंसदान साइंस जो है वो तो तवहुमात यानी वहम के खिलाफ है, ठीक है, तो अब बात ही नहीं करते इस टॉपिक के ऊपर ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर बंदे पैदा कर दिए हमारे हजरत जी जैसे बंदे भी, ठीक है, जो कि साइंसदान भी थे और ईमान वाले भी थे, और उसके अलावा वो जो टर्की के अंदर एक है फत क्या नाम है उसका, बड़ी किताब है उसने लिखी, बड़ी तस्वीरों वस्वीरों के साथ उनकी किताब होती है ना, और हर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, क्या नाम था उनका किसी को याद है? जहन में नहीं आ रहा, फतहुल्ला गुलेन गालिबन एक नाम था, और हारून याहया के किताबी नाम के साथ, हारून याहया का नाम, ठीक है, डिनायल ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी का जो है वो तलाकमा करके, ठीक है। तो इस तरह के लोगों का अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और साइंटिफिकली जो है ना वो बहरहाल, तो अब वो बात ही नहीं करता है, वो दूसरी बातें करता है। पहली आयत में सिंह मुतालिफ फरमाया कि अब गैर अब्तगी हकमा, क्या अल्लाह को छोड़ करके मैं किसी और को अपना हकम बनाऊं, फैसला करने वाला बनाऊं? क्या यानी क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला के इस फैसले के बाद मैं किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? ये नहीं हो सकता, ठीक है। जब अल्लाह ताला है फैसला करने वाला, तो मैं किसी और से फैसला क्यों करवाऊं कि क्या सही है क्या गलत है? किस चीज का फैसला? ये कोई थोड़ी कि तुमने चोरी करी है तो मैंने चोरी नहीं करी तो अब मैं अल्लाह को बुला रहा हूँ, अल्लाह मैंने चोरी करी या मैंने चोरी नहीं करी, ये फैसला करने के लिए नहीं, ठीक है ना। ये कोई थोड़ी है कि दो पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा तो अब अल्लाह ताला उतर करके जो है ना वो फैसला करेंगे कि इस झगड़े के अंदर हक पे कौन था। ऐसा तो नहीं होता ना कि अल्लाह ताला उतर आते हैं और फिर हम उनके लिए एक सीट लगाते हैं, जज की सीट बिठा बिठाते हैं और उसके ऊपर अल्लाह ताला आके बैठते हैं और फिर फैसला करते हैं भाई इस पड़ोसी ने पहल करी थी कि इस पड़ोसी ने पहल करी थी। ये मतलब नहीं है अल्लाह ताला को हकम बनाने का, बल्कि क्या मतलब है इस अल्लाह ताला को हकम बनाने का कि जो फैसला किसी भी मुकदमे में किया जाएगा वो फैसला जो है वो अल्लाह के हुक्मों के और अल्लाह के बताए हुए मेयार के मुताबिक किया जाएगा, जो कि अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए से हमें बता चुके हैं, ठीक है। अल्लाह के बताए हुए मेयार के मुताबिक, किसी दूसरे के बताए हुए मेयार के मुताबिक फैसला नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सच है कि ये कौन सच है और कौन झूठ है और कौन सजा के काबिल है और कौन जो है वो जजा के काबिल है, किसी और के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, ये अल्लाह के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद कुरान करीम की चंद ऐसी खसूसियात का जिक्र किया गया है जो खुद कुरान करीम के हक और कलाम इलाही होने का हुदूत है। मसलन फरमाया वल्लज़ी अनज़ला इलैकुम किताबा मुफस्सला, जिसमें कुरान करीम के चार खसूसी कमालात का बयान है, यानी हुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुम, बस इस छोटी सी आयत के छोटे से टुकड़े के अंदर चार खसूसी कमालात का बयान कुरान करीम के। पहला का कमाल क्या, कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ है ना, अनज़ला इलैकुम यानी अल्लाह ने नाजिल किया इस किताब को, तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दूसरा ये कि वो एक किताब कामिल और मुअज्ज़िज़ है, आजिज कर देने वाली, हरा देने वाली और कामिल है, कि सारा जहान उसके मुकाबले से आजिज है, ठीक है। तीसरे ये कि तमाम अहम और उसूली मजामीन इसमें बहुत मुफस्सल वाज़ह बयान किए गए हैं। चौथे ये कि कुरान करीम से पहले अहले किताब यहूद और नसारा भी यकीन के साथ जानते हैं कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम हक है, फिर जिनमें कोई सच्चाई और हक कोई की सिफत थी उन्होंने उसको जाहिर भी कर दिया यानी एडमिट भी कर दिया, और जो लोग मुआनिद थे यानी वही दुश्मनी, इनाद दुश्मनी को कहते हैं ना, तो मुआनिद वो हुआ जिसके अंदर बस दुश्मनी है, वो बावजूद यकीन के इसका इजहार नहीं करते थे, यानी यकीन तो उनको था कि अल्लाह की किताब है क्योंकि उन्होंने सारी निशानियां देख ली थी, निशानियां देख ली थी, लेकिन अड़धर्मी और दुश्मनी की वजह से इकरार नहीं करते थे। तो ये चार कमालात जो है फरमाया के इस आयत के अंदर है, और यह उन सलात तफसीर में तफसील से इनके बारे में बात कर भी चुके थे, इस वजह से मुझे इसको रिपीट नहीं करना। पुराने करीम के इन चार सिफात को बयान करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि फला तकूनन्ना मिनल मुफ्तरीन, यानी इन वाज़े दलाइल के बाद आप शुबा करने वालों में ना हो। ये जाहिर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी वक्त शुबा करने वालों में ना थे ना हो सकते थे, जैसे कि खुद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तफसीर इब्न कसीर में है कि ना मैंने कभी शक किया और ना कभी सवाल किया, ठीक है। तो सबसे पहला एतमाद करने वाला इस दावत के ऊपर तो मैं खुद हूं, ठीक है। नबी खुद ही जो है वो सबसे पहले मोमिन होता है, अल्लाह ताला भी मोमिन, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने जो दीन बनाया तो अल्लाह ताला खुद जो है ना वो उसके ऊपर सबसे पहले अल-मोमिन, अल्लाह ताला की सिफात ये नाम में से एक नाम क्या है, अल-मोमिन, ठीक है। क्या मतलब अल-मोमिन, कि अल्लाह ताला खुद मोमिन है, किस पर एतमाद करने वाला? अल्लाह ताला अपने रसूल पर एतमाद करने वाले नहीं, अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया उस निजाम के ऊपर अल्लाह ताला को कोई शक नहीं है कि ये निजाम ठीक है कि ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि ये कैसे हो, ये बात, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप। ठीक है कि अल्लाह ताला को एतमाद है अपने, भाई आप खुद सोचे ना, आप कोई बात बना, आप कोई चीज बनाती है, ठीक है ना, जैसे आपने कोई डिश बनाई, ठीक है, अब आप ने जैसे भी मेहनत करके डिश तो बना ली, लेकिन एक दिल में एक एक खदशा है कि पता नहीं ये डिश जो है ना, ये वाकई अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। होता है कि नहीं होता, कि मैंने बना तो दी है और बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी जो है वो तवज्जो के साथ बनाई है, लेकिन पता नहीं वाकई ये अच्छी है कि नहीं है। एक शक होता है ना अपनी बनाई हुई किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अल्लाह ताला का ऐसा मामला नहीं है कि अपना बनाए हुए जो उसूल हैं उनके ऊपर शक है कि पता नहीं मैंने कामिल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला को बिल्कुल भी शक नहीं है, तो अल्लाह ताला बिल्कुल एतमाद रखते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि भाई मैं अल्लाह ताला से जो चीजें मुझे मिली हैं, फिर मैं आगे जो बयान कर रहा हूं, पता नहीं ये वाकई फायदा मंद है कि नहीं है। ये भी बहुत होता है। एक साथी ने फिर जुम्मे के बयान के बाद बैठे थे, हम कुछ तकरार कर रहे थे बयान के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सिलसिला शुरू हो गया पिछले जुम्मे को बैठ करके। फिर जो निजी मजलिस होती है ना, उसमें फिर हमने कहा कि भाई उसी बयान के बारे में ही हम तकरार करते हैं। ठीक है, तो फिर लोगों ने काफी सारे अपने पॉइंट्स जो लिखे थे फिर वो भी बयान किए, और फिर आगे से कुछ सवाल भी हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी तफसीली फिर बातचीत हुई। ये फिर वो मर्दों वाली नशस्त में होती है, खवातीन में उनकी अपनी जो रेलिवेंट ज्यादा बातें होती हैं वो हो रही होती हैं। तो किसी साथी ने सवाल किया कि ये बात समझ में नहीं आई हमें कि दाई जो होता है ना, उसको अपनी दावत के ऊपर खुद एतमाद करना, तो वो ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि वो कोई बात तो कह रहा हो लेकिन उसको एतमाद ना हो उसके ऊपर। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है, ये कौन सी मुश्किल बात है, इसको बहुत आसानी से समझना, बहुत आसानी से समझा जा सकता है अगर आप वाकई, जैसे हम कई दफा समझा चुके हैं लेकिन याद नहीं रहता ना फिर, या समझ में ही नहीं आता और याद नहीं रखते कि भाई अच्छा ये तो बात हो चुकी है क्लास में, भाई हम कई दफा समझा चुके हैं इस बात को कि दीन की दावत इज जस्ट लाइक सेलिंग सेलिंग। ठीक है, यानी किसी चीज को जो है ना वो आगे फरोख्त करना। ठीक है, अब वो फरोख्त करने का मतलब क्या कि उसको खरीदने वाले कस्टमर नहीं है, आप कस्टमर को बाकायदा कन्विंस कर रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तुम इसको खरीद लो। ठीक है, अपने जेब में से पैसे निकालो, मुझे दे दो वो पैसे और मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट तुम्हारे बड़े काम की प्रोडक्ट है, तुम्हें बहुत फायदा होगा इससे, है ना भाई। आप लोग शैम्पू खरीदती हैं, लोशन खरीदती हैं, और तो भाई क्या ऐसी खरीद लेती हैं बगैर ये देखे हुए कि वो काम का लोशन है भी कि नहीं है, उससे मुझे जो है वो फायदा होगा कि नहीं होगा, आप ऐसी खरीद लेती हैं, नहीं आप कन्विंस होती हैं ना, तो आपको कन्विंस कोई करता है तब आप कन्विंस होती हैं ना कि ये अच्छी चीज है, तो भाई इसी को तो सेलिंग कहते हैं। तो दीन भी तो सेलिंग है ना, दीन की दावत करना क्या है, ये सेलिंग है। आप अगले बंदे को जो है वो कन्विंस कर रहे होते हैं कि भाई ये तरीका है जिंदगी गुजारने का जिससे तुम्हें फायदे ही फायदे होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, मरने के बाद वाली जिंदगी में भी फायदे होंगे। ठीक है, तो सेलिंग करना जो है यही दीन की दावत देना, और दीन की दावत देना सेलिंग करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी आपने गौर किया हो या कभी आपका अपना वास्ता पड़ा हो कि कभी आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी को बेचनी पड़ती है क्योंकि आप उस कंपनी के अंदर जॉब कर रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि करना चाहिए लेकिन कर रही हैं बस, या आपने करी होगी कभी, अब आप बेच तो रही हैं लेकिन आपको पता है कि ये जो है ना वो प्रोडक्ट जो मैं बेच रही हूँ ना ये इतनी अच्छी है नहीं कि जितने जो है ना वो हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रोशोर में लिख दिया, पैम्फलेट बना दिया, ये बड़े बेहतरीन शैम्पू है दुनिया का, इससे जो है ना फिर आपके बाल कभी भी नहीं गिरेंगे और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बताइए लिख दिया सारा कुछ आपने उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको भी बताया कि ये जो है ना वो कितना इसके अंदर झूठ शामिल है। ठीक है, लैब वाले तो जिन्होंने बनाया वो कह रहे हैं कि इतना भाई अच्छा नहीं है, लेकिन जो सेल्स वाले होते हैं ना वो झूठ झूठ लिख लिख करके फिर वो आगे बेच देते हैं,
एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट से वो बनवा देते हैं एड, वो किसी टीम को हायर करके एडवर्टाइजमेंट से एक जो है बना देते हैं, ठीक है। लेकिन सच उसमें बहुत कम सच होता है, या थोड़ा सच होता है, ज्यादा झूठ होता है, या थोड़ा झूठ तो होता है ना, कम से कम पूरा सच नहीं होता। तो अब जो सेल्समैन होता है ना, उसको पता होता है कि ये जो बात है ना, ये ठीक नहीं है, तो वो उसको खुद अपनी बात के ऊपर एतमाद नहीं होता, लेकिन बेच रहा होता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको बेचना है, जॉब खत्म हो जाएगी उसकी अगर उसने नहीं बेचा, उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उसको उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर उसने अपने इतने प्रोडक्ट बेची बेच के नहीं दिखाई तो। ऐसा बहुत होता है दुनिया में, तो ये बहुत होता है, खुसूसन आजकल के सेल्स डिपार्टमेंट में तो बहुत होता है। जभी तो यही तो इसको ताजर कहा ना, ये जो बंदा सेल कर रहा होता है ना, इसको ताजर कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अताजरुल सदूकुल अमीन हो ना, कि जो सच्चा ताजर होता है और अमानतदार ताजर होता है, मान नबी नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाय व सालिहीन, वो कयामत के दिन नबियों और सिद्दीकीन के साथ होगा और शुहदा के साथ होगा और सालिहीन के साथ होगा, ठीक है। यानी इतना बड़ा उसको अजर मिलेगा जो कि अपनी तिजारत में सच्ची बात करके अपनी चीज को बेच रहा है। क्योंकि क्यों इतना बड़ा अजर मिलेगा? क्योंकि ये बहुत मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल तरीन काम है कि आप सारी बात सच बोले। क्योंकि जाहिर है, जब आप सारी बात सच बोलेंगे तो फिर अगला बंदा जो है वो हो सकता है आपकी किसी बात को जो है वो इनकार करता हो, या आप यानी अपने प्रोडक्ट की खामियां भी बयान कर देंगे, तो फिर वो खामियां सुनकर कहेगा यार मैं उस बंदे के पास क्यों ना चला जाऊं कि जो कि कह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं है, है ना। अब उसको भी पता है कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन पीपल लाइक टू बी लाइड टू, वी लाइक टू बी लाइड टू, है ना। तो हमें पता है कल का बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन हम उस बंदे के पास ज्यादा पसंद करते हैं जाना जो कि कहता है कि नहीं जी सब ठीक है। और जो बंदा कहता है कि नहीं सब ठीक नहीं है, कुछ खराब भी है, हम कहते हैं यार इसकी बात ही नहीं सुनते हैं हम, ये क्या खामखा के डिप्रेसिंग किस्म की बातें करते रहते हैं, ठीक है। हालांकि हमें भी पता है कि सब ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने कानों को जो है ना वो तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इस वजह से सेलिंग के अंदर जो है ना वो पूरा सच बोलना वो बड़ा मुश्किल काम है। अब दीन का जो दाई होता है, जो दीन का सेलर होता है, तो वो अगर दीन के बारे में जरा से भी डाउट में मुब्तला हो तो फिर क्या उसने आगे दीन को सेल करना है ना। बहरहाल, तो दीन के अंदर डाउट होना ये बड़ा संगीन किस्म का काम है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना वो हमने कल आप लोगों को ग्रुप के ऊपर एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जो हमें आप में से किसी ने ही फॉरवर्ड किया था, ठीक है। वो मैसेज क्या था, एक तो नात भेजी थी ना, वो नात में तो माशाल्लाह लोगों को बड़ा मजा आया नात सुनकर के, हजरत जी की बना लिया है बहारों ने घर मदीने में, है ना। वो तो बहुत अच्छा हो गया ना, मेरे सास को बड़ी मोहब्बत जागी होगी आपके दिल में। फिर उसके बाद हमने दूसरा मैसेज भेज दिया, वो क्या था, उस मैसेज में अल्फाज ये थे कि यकीन जान जिस दिन आप अपनी बच्चियों को वो तालीम देने लगे कि जिसका सबसे बड़ा सबक ईमान और इफ्फत हो, ठीक है, इफ्फत का मतलब क्या, हया, ठीक है। तो जिस दिन आप अपनी बच्चियों को वो तालीम देने लगे कि जिसका सबसे बड़ा सबक ईमान और इफ्फत हो, उस दिन मगरिब यानी ये यूरोप अमेरिका, ठीक है, मगरिब आपके यहाँ तालीम आम करने के मुतालबे नहीं बल्कि तालीम पर पाबंदी की तहरीक चलाएगा। मसला सारा इस वक्त तालीम की डेफिनेशन का है, ठीक है, कभी कौन सी तालीम, है ना भाई, तालीम का मसला नहीं है, तालीम का हुक्म तो अल्लाह ताला ने दिया, इकरा, ठीक है ना, और तालीम का हुक्म तो नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, लेकिन सवाल क्या है कौन सी तालीम का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है ना, वो तालीम जो आपके अंदर से ईमान को निकाल दे, एतमाद को निकाल दे और हया और पाकदामनी को निकाल दे, क्या इस तालीम का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया था, या उस तालीम का अल्लाह और उसके रसूल ने दिया ने हुक्म दिया था कि जो कि ईमान को पक्का करे और हया और पाकदामनी को जो है वो आपके रग रग रेशे रेशे में पहुंचा दे। जवाब हमें पता है इसका, लेकिन बात वही के इन्फ्लुएंस है ना, मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो अपने रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस, तो जुहला का इन्फ्लुएंस, तो फिस्क व फुजूर का इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस हम इतने अंडर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि बिल्कुल ये कॉमन सेंस की जो बात है उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं नहीं, इट डजेंट मैटर व्हाट तालीम, बस तालीम। ठीक है, तो बहरहाल तो मैसेज तो हमने आपको भेज दिया, ठीक है। तो चूंकि तो कब से इसके बारे में बातें कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं कि भाई कौन सी तालीम, कौन सी तालीम, ठीक ना। तो अब जब मैसेज भेज दिया तो फिर अल्लाह ताला ने एक ख्याल दिल में डाला कि भाई आगे थोड़ा सा और भी कुछ लिख के भेजना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला अभी तक अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो अब वो इसका फॉलो अप मैसेज किया था, ओके, अभी तक लिखने का मौका नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने क्लास में फिर मौका दे दिया अभी आपसे बात करने का। तो इसका फॉलो अप मैसेज जो है वो क्या, बल्कि दिल तो चाहता है कि आपसे पूछें कि इसके ऊपर एक फॉलो अप मैसेज भी होना चाहिए। तो अगर आप होती इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने वाली, तो आपके दिल में एक फॉलो अप मैसेज आता कि इसके बाद एक और भी चीज बड़ी जरूरी है लोगों को भेजना या लोगों को बताना, और उसके बगैर जो है ना वो बात मुकम्मल नहीं होगी, या उसके बगैर लोगों के दिल में आने वाला जो एतराज है वो अनअटेंडेड रह जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एतराज पैदा होता है, इस मैसेज के ऊपर एक एतराज पैदा होता है, वो एतराज क्या, ये कोई कोई बताया आपने से, ये जो मैसेज कल भेजा था ना, इसके ऊपर एक एतराज, या इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज होता है इश्काल, ठीक है। तो इश्काल बता दें या एतराज बता दें, जो भी चाहें बता दें, लेकिन कुछ बताएं कि ये मैसेज पढ़ करके आपके जहन में कोई इश्काल या एतराज आया, बेशक आपके अपने जहन का वो ना हो, लेकिन ये कभी किसी और के दिमाग में ये आएगा सवाल, ठीक है। तो वो बताएं कि जिस दिन आप अपनी बच्चियों को वो तालीम देने लगे जिसका सबसे बड़ा सबक ईमान और इफ्फत हो, उस दिन मगरिब आपके यहाँ तालीम आम करने के मुकाबले नहीं बल्कि तालीम पर पाबंदी की तहरीक चलाएगा। मसला सारा इस वक्त तालीम की डेफिनेशन का है, ठीक है। तो इस मैसेज के ऊपर एक एक एतराज या इश्कार क्या है? इन्होंने लिखा कि इफ्फत और ईमान वाली तालीम मिलेगी कहाँ? ये तो फिर सवाल बनता है ना खाली, ये इश्काल या इतराज की थोड़ी बात है, सवाल बनता है। तो सवाल का जवाब देने भाई आप अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हैं अभी, ठीक है, या मदारिस कह लें या खानकाहें कह लें या वैसे ही अल्लाह वाले कह लें, तो ये तो सवाल हो गया, इसका जवाब दे दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं इसके ऊपर एक एतराज, ठीक है, एक एतराज। चले, इन्होंने क्या लिखा, वेयर डू वी टेक आवर डेफिनेशंस फ्रॉम, हु डिफाइन्स थिंग्स, ये भी एक सवाल ही बना, ये भी कोई इश्कार और एतराज तो नहीं बना, ये तो सवाल बना कि वेयर डू वी टेक आवर डेफिनेशंस फ्रॉम, हु डिफाइन्स थिंग्स। भाई इसका जवाब सीधा सीधा, वी टेक आवर डेफिनेशंस फ्रॉम अल्लाह, वी टेक आवर डेफिनेशंस फ्रॉम इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये तो एक सवाल बाप ने बता दिया ना, हम एतराज पूछ रहे हैं आपसे, एक एतराज मिसाल के तौर पर, अगरचे कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम गेटिंग एट, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको एतराज। इन्होंने क्या लिखा है, पहले ये पढ़ लेंगे आप। वेस्ट वाले अपने पैटर्न को बढ़ाएंगे ना कि ऑपोजिट करेंगे, क्या पता नहीं क्या बोलूंगी भाई, यहाँ लिख रहे हैं ना कौम, चले इन्होंने अलग से लिखा है तो वो भी पढ़ लेते हैं। तालीम अलग चीज है और ईमान और इफ्फत अलग चीज है। अच्छा, ये तालीम अलग चीज है और ईमान और इफ्फत अलग चीज है, चलो चलें, ये भी एक बेढंगा सा एतराज हो सकता है, ठीक है, कि तालीम है ही अलग चीज, पता नहीं क्या चीज है तालीम पर, और ईमान और उल्फत और क्या लगे, यानी तालीम और ईमान और उल्फत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है।
तो ये कह सकते हैं कि ये एक एतराज बन सकता है, लेकिन बहुत ही बेढंगा और बहुत ही वाहियात किस्म का ये एतराज कहलाएगा कि तालीम अलग चीज है और ईमान और इफ्फत अलग चीज है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग करते हैं इस किस्म की बातें, यानी कोई ताल्लुक ही नहीं है ईमान और इफ्फत का तालीम के साथ। अच्छा, हम भी इसी सिस्टम के पढ़कर आए हैं जी, माशाल्लाह, ये पहुंच गए उस एतराज के ऊपर, ठीक है। इस पर आप अपने जुमले को थोड़ा पूरा नहीं करेंगे। लोग यही कहते हैं कि आप लोग तो तालीम के खिलाफ हैं, औरत घर बैठ जाए अब क्या। नहीं, ये तो इस मैसेज के अंदर बात हो चुकी है ना, कभी मसला तालीम की डेफिनेशंस का है ना, ठीक है। तो ये कोई थोड़ी कह रही है कि आप तालीम हासिल ना करें, यानी ये मैसेज वाले जो है ये कोई थोड़ी कह रहे हैं कि आप तालीम हासिल ना करें। तो मैसेज के अंदर ही ये चीज मौजूद है कि भाई मसला खाली डेफिनेशंस का है। क्या मगरबी तालीम में ईमान और उल्फत को शामिल नहीं किया जा सकता? उसके साथ भी तो ये मुमकिन है। मगरबी तालीम में ईमान और उल्फत को शामिल नहीं किया जा सकता, अब तो कर लेना पहले शामिल, पहले शामिल तो करें ना, फिर उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा, ठीक है। हम तो थोड़ी कह रहे हैं कि आप मगरबी तालीम में ईमान और उल्फत को शामिल नहीं कर सकते। आप करें, जो चीज आपको जाहिर है उसके अंदर उसके खिलाफ नजर आएगी, पहले उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है भाई। एक चीज है, एक फॉर एग्जाम्पल मगरबी तालीमी किताब है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि देर इज नो गॉड, ठीक है। तो आप उसके अंदर जो है वो गॉड को दाखिल करना चाहते हैं, तो क्या ख्याल है कि देर इज नो गॉड वाला सेंटेंस भी उसी में रहने देंगे, और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस कहेंगे कि देर इज गॉड, ऐसा करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको गॉड को दाखिल करना है, तो फिर देर इज नो गॉड वाला जो सेंटेंस है उसको पहले निकालना पड़ेगा ना उसके अंदर से, ठीक है। तो अगर आप उसको निकाल देंगे, तो फिर आप देर इज गॉड वाला सेंटेंस अंदर अंदर डाल देंगे, देन देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो एतराज ना बना, ये तो एक सवाल ही बना, हम उसका जवाब देंगे कि हाँ बिल्कुल शामिल किया जा सकता है, लेकिन शामिल करने से पहले आपको जो उसके खिलाफ बातें उनको निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी कोई एतराज ना बना। तो जो एतराज था ना, क्या तालीम के साथ बेटियों को हया नहीं सिखाई जा सकती? नहीं सिखा सकते भाई, आप बेहयाई की बात निकाल दें, फिर उसके बाद हया उसके अंदर डाल दें, तो फिर जरूर सिखाई जा सकती है। व्हाई वेस्ट विल्स ट्राई टू स्टॉप दिस एजुकेशन? नहीं, बात को तो इन्होंने जो लिखा था ना, वो जवाब था, कहाँ चला गया, हाँ, कि हम भी तो इसी सिस्टम के पढ़कर आए हैं, इसी सिस्टम से पढ़कर आए हैं, है ना भाई। कितने लोग हैं? 76 लोग हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप में से सारे तो इस सिस्टम से पूरे पढ़ के नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादातर इसी सिस्टम से पढ़ के आए हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कि हम इसी सिस्टम में पढ़े हैं, लेकिन हम तो फिर भी ईमान वाले हैं और हया वाले हैं, ये है एतराज, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बट वी टर्न आउट फाइन, ठीक है, बट वी केम आउट फाइन, ठीक है, कि हम तो कभी मदरसे नहीं गए, हम तो कभी खानकाह में नहीं गए, और हमने तो जो है ना वो इसी तालीमी निजाम के अंदर केजी से लेकर के मैट्रिक तक भी पढ़ा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट भी किया, और बाकी ने ओ लेवल्स भी किया और ए लेवल भी किया, एंड वी आर फाइन, मतलब वी आर ग्रेट मोमेंस, ठीक है, और वी आर एब्सोल्युटली बाहया, ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक निकल आए इसमें से, ईमान वाले निकल आए, हया वाले निकल आए, ठीक है ना। तो इसी तालीमी निजाम से हमारा तो बाल भी नहीं बिका, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं ये वाली बात कि तालीमी निजाम की डेफिनेशन का मसला है, और जो है ये मगरबी तालीमी निजाम जो है वो ईमान और हया के खिलाफ है, और अगर जो है वो आपने ईमान और हया वाली तालीम देनी शुरू कर दी, तो मगरब जो है इसके खिलाफ होगा। भाई हम तो
अच्छे खासे ईमान वाले, पक्के ईमान वाले निकल के आए ऐसी तालीमी निजाम में से, ठीक है ना। ये बनता है एतराज, तो इस एतराज का आप जवाब भी बता दें। इस एतराज का कोई जवाब है या नहीं है, या फिर आप अपना मुंह लेकर के, वो कहते हैं ना, अपना सा मुंह लेके बैठ जाएं, हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बस छोड़ो आप तालीमी निजाम के बारे में बात बात करना, छोड़ो आप, खत्म करो, है ना भाई। हम अपने सारे वापस लेते हैं जो हमने इल्जामात लगाए हुए हैं इस तालीमी निजाम में, हम सब वापस लेते हैं, ठीक है ना। एंड वी डिक्लेयर आर इड्स, वी डिक्लेयर आर फेलियर, या हम बल्कि फेरियल भी नहीं, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं कि हमने खामखाई इस तालीमी निजाम के खिलाफ जो है ना इतनी बातें कर ली, क्योंकि इस तालीमी निजाम से पढ़ के इतने पक्के पक्के मोमिन बन करके निकले तो हैं जो कि यहां बैठे हुए सारे के सारे, है ना भाई। जब इतने पक्के पक्के मोमिन बन के निकले हैं तालीमी निजाम से, तो फिर इस तालीमी निजाम के खिलाफ बातें करने वाले तो पागल दीवाने ही होंगे फिर, इसका मतलब है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर ये फकीर अकेला होता तो बड़ा आसान था पागल दीवाना करार दिया जाना। मजे की बात तो यह है कि ये पागल दीवानों की सफ में फिर काफी सारे और लोगों को भी दाखिल करना पड़ जाएगा, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम आज के दौर का जिंदा हकीकत, अल्लाह उनकी जिंदगी को और उसके अंदर बरकतें और सेहत और आफियत वाली मजीद जिंदगी लंबी अता फरमाए, हजरत मौलाना मुफ्ती शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी दामत बरकात हो, ठीक है ना। तो उनके ऊपर तो आजकल इवन हुकूमतें भी सेटल हुई हुई है कि हाँ जी बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने अभी फतवा दे दिया कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो जायज नहीं है। तो हुकूमत के इदारे उनके पास पहुंच गए कि हजरत हजरत ये क्रिप्टो करेंसी को आपने जो नाजायज करार दे दिया है, तो लेट्स लेट्स सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। यानी हुकूमतें भी जो है ना वो उनको आप बड़ा मानना शुरू हो गई हैं, तो अवामुन नास तो छोटी चीज होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो पागल दीवानों की सफ में आपको उन्हें भी दाखिल करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्यों, वाई? इसलिए कि इस तालीमी निजाम से पल करके पढ़ करके इतने पक्के ईमान वाले निकल आए हैं, ठीक है। तो फिर क्या इसका जवाब है? हम, इन्होंने लिखा कि हम खुश फहमी में मुबतला हैं कि हम ईमान वाले और इफ्फत वाले, ठीक है। और लिखा कि ये सिर्फ हमारा गुमान है कि हम इस तालीमी निजाम से बाहया और पक्के ईमान वाले बनकर निकले हैं, ठीक है। और किसी ने क्या लिखा कि हमारी डेफिनेशंस ही मेस्ड अप हो चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम में ईमान और हया बाकी है या नहीं है, ठीक है। ईमान और हया की डेफिनेशन ही मालूम नहीं है, ठीक है। हमें ईमान की तारीफ ही नहीं पता, हम गलत तारीफ को जो है ना वो अपने ऊपर लागू करके इस मखमसे में मुब्तला हैं कि हम ईमान वाले हैं। क्या तारीफ है वो गलत? क्या वो गलत तारीफ है कि जिसको कि हम असल तारीफ समझ करके इस मखमसे में मुब्तला हैं कि हम ईमान वाले हैं, और हम तो इसी तालीमी निजाम से पढ़ के निकले थे और हमें तो कुछ भी ना हुआ। तो अब जो है ना वो जो तालीमी निजाम के खिलाफ बातें करने वाले पागल और दीवाने ही हो सकते हैं फिर, इसका मतलब है। बिकॉज वी केम आउट प्रिटी फाइन, है ना भाई। यही मुझे तो बाकायदा अल्फाज भी लोगों ने बोले हैं कि वी केम आउट गुड इनफ फ्रॉम दिस सेम एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये है बहुत बड़ा मसला कि हम अपने बारे में गुमान कर रहे हैं कि हमारा ईमान सलामत है, ठीक है। उसकी वजह क्या, हमें यही नहीं पता कि ईमान का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जिस तरह बाइबल पर ईमान होता है ना, बाइबल पर ईमान है ना, ईमान का की शर्त है कि आप आसमानी किताबों पर ईमान लेकर के आए, ईमान की शर्त है ना कि आसमानी किताबों पर। वह कुतुब ही, तो कुतुब ही में सिर्फ कुरान तो नहीं है, कुतुब ही के अंदर तौरात और इंजील भी शामिल है, ठीक है ना, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुब, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबी व रुसुली व यौम आखिरी, तो कुतुब के अंदर तो तौरात और इंजील भी शामिल है, ठीक है। तो क्या आप तौरात और इंजील के अंदर एक एक आयत के ऊपर जो वहां पे लिखी हुई है उसके ऊपर ईमान लेकर के आते हैं? नहीं, क्योंकि जो अवामुन नास में तौरात और इंजील दस्तियाब है वो गलत हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अब उनके ऊपर आप तफसीली ईमान नहीं लेकर आते, आप इजमाली ईमान लेकर के आते हैं। तौरात और इंजील के ऊपर इजमाली के, हाँ तौरात जो थी असली तौरात वो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी, जो असली इंजील अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी उसके ऊपर मैं एतमाद करता हूं कि हाँ वो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी, लेकिन तफसीली ईमान आप नहीं ला सकते उसके ऊपर क्योंकि वो अब असल हालत में है ही नहीं मौजूद। क्या कुरान मजीद के ऊपर भी इसी तरीके से इजमाली ईमान लाना है? क्या वो ईमान के लिए काफी है कि इजमाली, हाँ कुरान मजीद अल्लाह की किताब है लेकिन कुरान मजीद की आयात के बारे में नहीं, ये ठीक नहीं है, ये इसके ऊपर मैं, तो अब आयात कुरानी क्या इसके ऊपर हमारा एतमाद है? आयात कुरानी के ऊपर हमारा एतमाद है कि नहीं है? वो जरा चेक करें, पता चल जाएगा, लग पता जाएगा कि किधर है ईमान, कौन सा ईमान। हया तो बाद में बात करते हैं ना, पहले तो ईमान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदलन ला मुबद्दिला लिकलिमातिक, ठीक है। अब कुरान मजीद के आयात उठाएं जो अभी हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को उठाने और जरा काउंटर क्वेश्चन करें अपने आप से कि क्या इसके ऊपर मुझे एतमाद है कि ये बात ऐसी है जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है ना। आगे फरमाया ना, अभी तो हम आसान बात कर लेते हैं कि आगे आयत नंबर 120 है, ठीक है। वदरू वाहिर अल इस्मी व बातिना, छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो और बातिन में करते हो, ठीक है ना। ये तो हुक्म है ना अल्लाह ताला का, छोड़ दो वो गुनाह, हम कहते हैं अभी बाकी गुनाह छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन लदीन यक्सिबून अल इस्मा, बेशक वो लोग जो कि गुनाह करते हैं, सयुज्जऊना बिमा कानू यख्तरिफून, अन करीब वो सजा पाएंगे अपने गुनाहों की, अपने किए किए की अन करीब वो सजा पाएंगे। और हम गुमान खाली नहीं रखते कि सजा नहीं मिलेगी, बल्कि हम मुंह से भी कहते हैं कुछ नहीं होता, राइट। जो गुनाह करते हैं, जो दूसरा करता है, अगर उसकी जिंदगी हमें बड़ी अच्छी नजर आ रही है, अच्छी सी गाड़ी है, अच्छा सा घर है, अच्छा सा जो है वो उसके पास जॉब है, हम कहते हैं यार गुनाह से तो कुछ भी ना हुआ, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और जब खुद गुनाह करते हैं तो अगर कोई आके हमें कुछ कह दे, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता भाई, सब सब मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी मजे की जिंदगी गुजारूंगा, गुनाह से क्या होता है। तो क्या इस आयत का इनकार नहीं कर दिया हमने? इन अल्लदीन यक्सिबून अल इस्मा सयुज्जऊना बिमा कानू यक्तरिफून। अब हम कह रहे हैं कि जी हम तो पक्के ईमान वाले निकल आए इस तालीमी निजाम के अंदर से, तो ये तो वही बात हो गई ना जो अभी चंद दिन पहले भी साजिद ने समझाने की कोशिश करी थी, अपने आप को धोखा देना, दूसरों को खाली धोखा नहीं देना, अपने आप को धोखा देना। जब भी तो अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिलती है कि देखो दिस इज व्हाट यू वांटेड फॉर योरसेल्फ, दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना भाई। जैसे मर्दों को सजा मिली हुई है ना कि तुम अगर औरतों की जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो ना तो अब तुम बाबुन निसा में से दाखिल किए जाओगे मेरे नबी की मस्जिद के अंदर, ठीक है ना। बिकॉज दिस इज वॉट यू वॉन्टेड फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्टेड टू बी अ वुमन, गो बी अ वुमन, ठीक है ना। ये नहीं कि वुमन होना कोई बुरी बात है भाई, मर्द होकर के वुमन होना बुरी बात है, जिस तरह वुमन होकर के मर्द बनने की कोशिश करना ये बुरी बात है, उसी तरह से मर्द होकर के वुमन बनने की कोशिश करना बुरी बात है। तो अब तुमने खुद ही पसंद किया है ना औरत बनना, तो तुमको मैं ये दिखा रहा हूं कि तुम्हारे साथ औरतों वाला सुलूक हर जगह ही हो रहा है, इवन मस्जिद नबवी में भी तुम्हारे साथ औरतों वाला सुलूक किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से धोखा, अपने आप को धोखे में रखना जो है ये हमें खुद पसंद है, तो अब अल्लाह ताला जो है वो दज्जाल जो है ना वो दुनिया के अंदर जाहिर करने वाले हैं कि अब तुमको पसंद था ना धोखे में रहना, लो ये दज्जाल, ये तुम्हें अब दिखाएगा धोखा क्या चीज होती है, तुम्हें लग पता जाएगा कि धोखा धोखा क्या चीज होती है। जो कि जिसका जवाब यही है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि धोखे का मतलब ये होता है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या धोखा हो रहा है।
है।
तो भाई ये जो ईमान वाला मसला है ना, ये इस वाले मैसेज के ऊपर एतराज यही बनता है, किस वजह से बनता है, अपने बारे में खुशफहमी की वजह से बनता है कि हम तो ईमान वाले हैं और इसी तालीमी निजाम में से पल करके निकले हैं, तो फिर क्यों मसला क्या है इस तालीमी निजाम के साथ। हया के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ ईमान की बात हो रही है, असल चीज क्या है ईमान। ठीक है जी, तो ये धोखे वाली जिंदगी जो है ना, इसको कोई फायदा नहीं है। हम कुरान मजीद के ऊपर ईमान वाकई ले आए ना, तब हमारा ईमान ईमान बनेगा। ठीक है, कहने से थोड़ी बनता है। ईमान वाले, अल्लाह ताला के बात की समझ, उमर की तौफीक अता फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।